नमस्ते साथियों, आप सुन रहे हैं बहराइच मोबाइल वाणी से अपना श्रीवास्तव को कभी न भूलने वाली टिप्स। भारत चीन युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए दृष्टा से दुश्मन का सामने करते हुए बलिदान होने वाले जाबाजों के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो रिजांग ला युद्ध स्मारक पर अंकित ये शब्द गूंजने लगते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए पितरों की अस्थियों और देवालयों के अवशेष को बचाने के लिए विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राण न्यौछावर करने से अच्छी मौत और क्या हो सकती है। वीरों के स्थान के बलिदान और लहू से लथपथ होकर हमारे अंतरात्मा पर अंकित हो गए हैं। मैंने इन साहसी सैनिकों के प्रेरक वीरगाथाएं सुनी हैं। उनके पास पर्याप्त साजो सामान नहीं थे, वे युद्ध की पूरी तैयारी भी नहीं कर पाए थे, लेकिन वायुसेना उन्हें चीन सीमा स्थित विभिन्न एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG पर उतार रही थी और वहां से जख्मी सैनिक एवं बलिदानों के पार्थिव शरीर को वापस ला रही थी। ये बात मुझे एक वह सैनिक से की कहानी से पता चली है। कह सैनिक कोई और नहीं बल्कि एक चंद्रशेखर है जो तब वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 21 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ भारत चीन युद्ध हमारे इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते और इसे भुलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें हमारे हजारों जाबाज सैनिक बलिदान हो गए और उनका परिवार उजड़ गया। उस समय राजनीति और सेना का शीर्ष नेतृत्व अक्षम लोगों के हाथों में था। हार के लिए जिम्मेदार लोगों को हमें अभी माफ नहीं करना चाहिए। यह सब तब हुआ जब दीवार पर लिखी इबारत चीनी खतरे के प्रति आगाह कर रही थी, किंतु उसे अनदेखा किया गया। मालूम हुए नेतृत्व में चीन की आक्रामक नीति व भविष्यवाणी उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही कर दी थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में उन्होंने चीन को संभावित दुश्मन बताया था। दुर्भाग्य से पंडित नेहरू शत्रुतापूर्ण रवैये वाले इस देश के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व की अवधारणा को लेकर सशक्त थे। इस मामले में युवा शायद वामपंथी सोच वाले रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से काफी प्रभावित रहे, जबकि राम मनोहर लोहिया MS गोलवलकर और जयप्रकाश नारायण जैसे कई दिग्गजों ने चीन के प्रति चिंता जाहिर की थी, मगर उसकी परवाह नहीं की गई। तत्कालीन सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रामक प्रचार में लगी रही। इसका फायदा उठाकर चीनियों ने भारतीय क्षेत्र पर घुसपैठ की। चीन ने 1953 के बाद आक्रामक रूप से सड़क निर्माण शुरू कर दिया। चीनी सैनिक दृष्टा पूर्वक सीमाओं का उल्लंघन कर रहे थे। 1954 के आरंभ में उनके मानचित्रों की अक्साई चीन की चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। किसी सतर्क एवं जिम्मेदार नेतृत्व के लिए यह खतरे की घंटी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जाने अनजाने पर चीन समकक्ष छाऊ NLI के बहकावे में आ गए और उन्होंने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। शांतिपूर्ण अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांत के रूप में पेश की गई यह संधि हमारे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व में दबूपन की निशानी है। संधि और औपचारिक रूप से तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया गया। चीन के राजमार्ग संख्या 219 का निर्माण पूरा किया जो सिनजियांग में होटन के तिब्बत में ल्हासा से जुड़ा जाता है। इसके अलावा उसने भारतीय सीमा गश्ती दल पर अपने क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप भी लगाया। वह समय हमारी सरकार के लिए दृष्टा से अपनी संप्रभुता की रक्षा करना का था। इसके बावजूद पंडित नेहरू और मेमन ने सेना प्रमुखों द्वारा संसाधनों को बढ़ाने और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को लेकर दिए गए सुझावों को नजरअंदाज कर दिया। वैचारिक दृष्टि से तत्कालीन सोवियत संघ अपने कम्युनिटी साथी चीन के साथ खड़ा था। भारत वैश्विक स्तर पर अलग अलग पड़ता गया, चीनी दुस्साहस बढ़ता गया।